Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Teeravanachari Yamuna Teeravanachari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Jai Prabhupad 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 Jai Jai Prabhupad Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Acharya Shtotra Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Shri Gaurnitai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Toh aasha karte hain ki aap bahut aatur hain sunne ke liye कि वो कौन सी घटना घटी महाराज भरत के जीवन में जबकि वो तपस्या करने के लिए पुलह आश्रम में गंडकी नदी के तट पर गए थे इतने अच्छे ढंग से उन्होंने भगवान की सेवा की करते रहे भाव भक्ति के स्तर पे भी पहुंच गए और वहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पूर्ण संतुष्टि उनको प्राप्त हुई। भगवान की सेवा करते करते ऐसे अवस्था में महाराज भरत बहुत सुंदर दिख रहे थे। दिन में 3 बार स्नान करते गंडकी नदी में और उनका शरीर हमेशा गीला ही रहता और वहां अपने आसन में विराजमान होकर वो सूर्य के भीतर स्थित भगवान नारायण की उपासना करते थे, भगवान सूर्य नारायण का। वैसे जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है वो भगवान नारायण को संबोधित करता है। वैसे भगवान नारायण सूर्यदेव में स्थित रहते हैं और ऋग्वेदों के मंत्र ब्रह्म गायत्री आदि के द्वारा वो पूजे जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा या आप स्वयं करते भी होंगे कभी कभी, प्रातः काल में जब पहली बार हम सूर्य का दर्शन करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? सूर्य देव के भीतर स्थित जो भगवान नारायण हैं उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, तो ये सूर्य नारायण कहलाते हैं। हाँ, आजकल सत्य नारायण बड़े प्रसिद्ध हैं, परंतु ऐसे सत्य नारायण पूजा वैसे शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है, ऐसे कोई विधि नहीं है सत्य नारायण पूजा की। ये पता नहीं कैसे शुरू हो गई, लेकिन सूर्य नारायण हाँ ये तो हैं। और वैसे ऋग्वेदों में मंत्र है, कहा जाता है कि जब भी हम सूर्य देव को देखते हैं प्रातः काल में तो हमें ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा उनको नमस्कार करना चाहिए। धेयः सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। धेयः सदा कि हमें सदा ध्यान करना चाहिए, किन के ऊपर? उनके ऊपर जो सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सवित्र मंडल मतलब सूर्य मंडल के बीच में स्थित हैं, उनका नाम क्या है? नारायण है। सरस जी आसन, सरसी मतलब जो सरस है, जो सरोवर से में जो जन्म लेते हैं, सरसी ज कमल पुष्प आसन, तो अपने कमल आसन पर भगवान नारायण सूर्य मंडल के भीतर स्थित हैं। तो ऐसे भगवान नारायण के ऊपर हमारा ध्यान सदा स्थित रहे, ऐसी प्रार्थना होती है सूर्य देव के प्रति। तो अगली बार आप सूर्य देव को देखेंगे तो ये अवश्य प्रार्थना आप कीजिए, भले मंत्र को याद न कर पाए लेकिन सूर्य नारायण को नमस्कार कीजिए। लेकिन हाँ, प्रातः काल में जल्दी करना अच्छा है, दोपहर के 12 बजे करने से आंखों में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे महाराज भरत सूर्य देव की उपासना कर रहे थे और ऐसे एक दिन एक ऐसी घटना हुई कि एक हिरणी वहां पर चली आई गंडकी नदी के पास, जलपान कर रही थी वो हिरणी और अचानक एक सिंह के गरजने की आवाज वहां पे आई। आप तो जानते हैं कि सिंह का गरजना बड़ा भयानक होता, भयंकर होता है, कोई साधारण आवाज नहीं होती है। अफ्रीका के एक हमारे भक्त हैं, सन्यासी हैं, तो कई महीने पहले वो हमें बता रहे थे कि सिंह का गरजना क्या चीज है। हम तो कभी सुने नहीं है, सुने हैं तो थोड़ा बहुत कुछ या सिनेमा में इधर उधर कुछ सुना होगा। वो कहते हैं कि वहां एक समाज है किन्या देश में जिनको मसाई कहते हैं, वो आदिवासी प्रकार के लोग हैं लेकिन क्षत्रिय स्वभाव के हैं। शूर वीरता पर उनका बहुत गर्व है। और जब उनके समाज में कोई लड़का जन्म लेता है तो वो मर्द तब तक नहीं माना जाता जब तक कि वो जाके एक सिंह का सामना नहीं करता है। तो 16-17 साल का जब हो जाता है लड़का तो उसे जाना पड़ता है जंगल में, सिंह को ढूंढ निकालना पड़ता है। और ये लोग अकेले नहीं जाते, साथ में 5-6 लोग ऐसे जाते हैं और हाथ में उनका त्रिशूल या जो भी है वो रहता है। और फिर वो ऐसे सिंह को ढूंढ निकालते हैं जो आराम से बैठे हैं जो जंगल में। तो सिंह बैठा हुआ रहता है और ये 5-6 लोग इसके पास में आते उसको घेर लेते हैं। कांप रहे होते हैं क्योंकि शूर वीरता दूर से अच्छी होती है। जब सिंह के पास में आए तो सिंह अपना सिर उठाता है, वो बड़े अच्छी तरह से वर्णन कर रहे थे, सिंह अपना सिर उठाता है, यूं इधर उधर देखता है, ये कौन नए लोग आ गए, चलो ठीक है इनसे भी निपटना होगा हमें। और फिर वो आराम से जैसे ये लोग खड़े हैं अपने अस्त्र को लेकर कांप रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे आक्रमण करें, फिर ये आराम से गरजने लगता है। बस मुंह ऐसे सर ऐसे यूं करके गरजता है। और जैसे वो गरजने की आवाज आती है, वो गरजता है, तो इनमें से 2-4 लोग तो गिर ही पड़ते हैं खड़े खड़े वो गिर पड़ते हैं, 1-2 तो भाग जाते हैं। और जो साहसी हैं खड़े हैं वो भी उस ध्वनि को सहन नहीं कर पाते, वो गिर जाते जमीन पर। यहां तक कि वो वर्णन करते हैं कि दूर पेड़ों पे ऊपर जो बंदर होते हैं वो भी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। देखिए बंदर कोई पेड़ से गिर जाए, बंदर समाज में इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। तो बहिष्कृत किया जाता है उसको बंदर समाज से। ऐसा कौन सा बंदर है जो पेड़ के ऊपर बैठे और गिर जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ये आवाज इतनी दूर तक फैलती है और जाती है कि वो बेचारे बंदर भी वहां कांप के ऐसे एक शॉक हो जाता है उनको, ऐसे एक धक्का पहुंच जाता है उनके हृदय में कि बस तुरंत वो गिर ही पड़ते हैं पेड़ के ऊपर से। तो फिर आगे चल के फिर ये आक्रमण करते हैं वगैरह जो होता है वो दूसरी बात है, फिर वो कथा तो अलग हो जाएगी। फिर कहने का मतलब ये है कि सिंह के गरजने की आवाज बहुत भयानक होती है। तो यहाँ पे जब जंगल में ऋषि मुनिगण तपस्या करने जाते थे ये सब उनको सामना करना पड़ता था। इसलिए बताया जाता है कि सबसे पहले जो व्यक्ति वानप्रस्थ लेकर वन में जा रहा है उसको निर्भय होना चाहिए। निर्भय नहीं होगा, दिन भर यही सोचेगा कि कहाँ शेर है, कहाँ सांप है, कहाँ है, तो क्या ध्यान करेगा, वो कैसे भगवान की सेवा करेगा वहां रह के। तो सोचिए भरत महाराज कितने साहसी थे कि वो बैठे थे बड़े आराम से अपनी सेवा पूजा कर रहे थे, लेकिन पास में एक सिंह के गरजने की आवाज सुनने पर जो हिरणी वहां आई थी नदी में जलपान करने के लिए वो बहुत घबरा गई। आप तो जानते हैं कि ऐसे पशु होते हैं जैसे बिल्ली हो या हिरणी हो या पशु होते हैं, हमेशा घबराए हुए रहते हैं, हमेशा इधर उधर आगे पीछे देखते रहते हैं कि कोई हमें हमारे ऊपर आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है। तो हिरणी भी इधर उधर देख रही थी। और जैसे ही ये ध्वनि सुनी, गरजने की आवाज आई, तो इतनी घबरा गई कि छलांग मार दी उसने नदी के अंदर। और वैसे वो हिरणी गर्भवती थी और डर के मारे जब वो छलांग मार दिया तो बच्चा गर्भ से निकल पड़ा और पानी में गिर पड़ा। और डर के मारे ये हिरणी तो तैर के चली गई नदी के उस पार, परंतु उसका जो बच्चा था वो वहीं रह गया और नदी में तैरता रहा। तो ये सारी घटना, ये सारा महाराज भरत के आंखों के सामने हुआ। साफ साफ महाराज भरत ने ये सब देखा। और हिरणी तो नदी पार करके चली गई, लेकिन देखा कि मैं मेरे बच्चे से अलग हो गई हूं, दुख के मारे वहां एक गुफे के अंदर मर पड़ी, मृत्यु हो गई और ये बच्चा यहां रह गया। बछड़ा। और महाराज भरत ने देखा कि अब क्या किया जाए, उसकी माँ तो मर गई, अब ये बच्चा है निस्सहाय, अब क्या किया जाए। मैं यहाँ ध्यान में बैठा हूँ और मेरी सेवा अर्चा सेवा वगैरह कर रहा हूँ, तो अब क्या किया जाए। तो महाराज भरत उठे, बच्चे को उठाया पानी से और फिर अपने पास रख दिया। और इस घटना से शुरू हो गई महाराज भरत का पतन। कृष्ण से अलावा किसी और चीज के ऊपर जब हमारा चिंतन मनन रहता है, जब हम किसी और वस्तु से या व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं संसार में, तो कृष्ण के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रह पाता है। हम जिसकी सेवा करेंगे उसके प्रति आकर्षण या आसक्ति उत्पन्न होना यह स्वाभाविक है। तो महाराज भरत के साथ ऐसे ही हुआ। और सुखदेव गोस्वामी जी बड़े विस्तार में इस आसक्ति का वर्णन करते हैं, कैसे आसक्ति उत्पन्न हुई सेवा के द्वारा, ये बताते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार के जो नियम हैं, प्रकृति के कानून जो हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं और एक साधक को चाहिए कि वो बहुत सावधान रहे। थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो बस व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए उपनिषदों में भी कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन एक तलवार की तरह है, इसके जो धार हैं दोनों तरफ होते हैं। यदि इस साधक सावधान न रहे, एक छोटी सी भूल के लिए एक ऐसे मोड़ उसका कैसे जीवन का मोड़ आ सकता है कि कई जन्म तक उसका असर हो सकता है। और भरत महाराज के साथ भी ऐसे ही हुआ। यद्यपि भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे थे, दूसरे शब्दों में प्राय प्रेमा भक्ति की अवस्था में पहुंचे थे, पूरी तरह से तो नहीं परंतु प्राय उस परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, परंतु भरत महाराज ने लापरवाही के कारण क्या अनुभव किया, आइए सुनते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि धीरे धीरे जब भरत महाराज ने देखा कि ये हिरण जो है, छोटा सा बच्चा है, ये मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, तो भरत महाराज सोचने लगे कि मेरा कर्तव्य है इसका भरण पोषण करना, इसका देखभाल करना, और उसके लालन पालन में भरण पोषण में इतने मग्न हो गए कि अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति, अपने नियमों के प्रति लापरवाही करने लगे। और धीरे धीरे से वो अपने नियमों को भूल गए, धीरे धीरे से भगवान को भूल गए। देखिए, हमारे चेतना में आसक्ति हो सकती है या तो कृष्ण के लिए या तो माया के लिए। यदि भगवान कृष्ण के प्रति हम आसक्त नहीं हैं तो माया के प्रति आसक्त होंगे, माया के प्रति आसक्त हैं तो कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। तो हमें चयन करना है, आसक्ति तो होनी ही है, आसक्ति के बिना हम नहीं रह सकते। एक वस्तु से निरासक्त होना है तो दूसरे वस्तु में हमें आसक्ति केंद्रित करनी चाहिए। तो केवल संसार से निरासक्त होना यह संभव नहीं है, ये एक कृत्रिम अवस्था है। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि त्याग जो लोग करते हैं संसार का, परंतु जो भगवान के भक्त नहीं हैं, इस त्याग की या विरक्ति की अवस्था को टिका के नहीं रख सकते, बनाए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि त्याग जो है वो जीव की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। जब हम किसी चीज को त्यागते हैं, हमारे जीवन में कोई आधार तो चाहिए। केवल त्याग देंगे संसार और भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगी हमारी, तो ये त्याग कैसे आगे चल के रह सकती है, नहीं टिकेगी ये। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार का भोग करना चाहते हैं, भोग कर करके भी वो ऊब जाते हैं। एक आदमी कोई सिनेमा देखना चाहता है, 10 बार देखेगा, 20 बार देखेगा, 25 बार देखेगा, फिर ऊब जाएगा। ये भोग की भी सीमा होती है यहां। अच्छा भोजन खाने के पहले हमें लगता है कि वाह बहुत अच्छा, हम खूब खाएंगे, बहुत खाएंगे, लेकिन जब पेट भर जाता है तो भोजन का नाम भी हम सुनना नहीं चाहते हैं। कोई वही रसगुल्ला हमें दिखाए तो सोचेंगे नहीं नहीं दिखाना भी नहीं, हम देखना भी नहीं चाहते हैं। इतना पेट जब भर जाता है तो इंद्र तृप्ति के विचार भी मन में हम नहीं ले सकते। तो भोग ऐसे है, क्योंकि भोग से भी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते, तो भोग से ऊब जाते हैं तो त्याग की अवस्था में आते हैं। अब हम रसगुल्ला त्याग रहे हैं, गुलाब जामुन त्याग रहे हैं, फिर थोड़ा सा ही त्याग रहता है, फिर से भूख लगती है, फिर से रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भोग और त्याग का चक्र है, कभी भोग तो कभी त्याग, फिर भोग फिर त्याग। व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता ऐसे द्वंद्वों में। स्थिर कब रह सकता है? जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति करे तब। क्यों? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, क्योंकि जीव का स्वरूप है कि वो नित्य रूप से भगवान कृष्ण का दास है। जब भगवान की सेवा करेगा तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और भोग और त्याग दोनों ही कृत्रिम अवस्थाएं हैं, इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहता है वो अपने चेतना को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करेगा, कृष्ण के प्रति आसक्त होने का प्रयास करेगा। और थोड़ी सी भी लापरवाही यदि वो व्यक्ति कर बैठे तो कृष्ण से मन उसका हट जाएगा, उसका मन माया में चले जाएगा। और यही हुआ भरत महाराज के साथ। और प्रभुपाद जी बार बार इन तात्पर्यों में चेतावनी देते हैं हम सबको कि कभी भी किसी साधक को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब इतना आगे बढ़ चुका हूं कि मुझे अब भक्ति के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, कि मुझे श्रवण कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, चार नियमों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, अभक्तों से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है, भक्तों के संग करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भक्त को नहीं सोचना चाहिए। विशेष करके ये विचार भले कभी मन में आए कि अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं, तो भक्तों के संग में जाकर श्रवण कीर्तन करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि भरत महाराज का स्तर था भाव भक्ति का। हम तो अभी वैधि भक्ति कर रहे हैं, अभी आगे चल के रागानुग साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति को पहुंचेंगे। जब भाव भक्ति की अवस्था में महाराज भरत के साथ ऐसे हुआ तो हम जो उनकी तुलना में तो नौसुखिया भक्त हैं, हम भले कैसे माया से दूर रह पाएंगे यदि हम लापरवाही करें तो। भरत महाराज ऐसे उस हिरण की सेवा में इतने मग्न हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कैसे वो भगवान की सेवा से हटते जा रहे थे। हाँ, ये भी एक माया का खेल है। जब माया में हम पड़ जाते हैं तो हमें कभी नहीं लगता कि हम माया में पड़े हैं, पता ही नहीं चलता कि कम कैसे हम फिसलते जा रहे हैं माया में और भक्ति से दूर हटते जा रहे हैं। तो फिर महाराज भरत हमेशा उस हिरण के बच्चे की रक्षा में तत्पर रहते कि कहीं कोई शेर आ जाए, कहीं कोई सिंह आ जाए, कहीं और कोई दुर्घटना हो जाए इस बच्चे के साथ। ये तो मेरा पुत्र है। अब देखिए भरत महाराज ने क्या नहीं त्याग किया था, उनके अनेक पुत्र थे, उनको त्याग दिया था, उनकी रानियां थीं, रानियों को त्याग दिया, संपत्ति ऐसी थी जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, जिनके सामने आजकल के टाटा बिरला तो कुछ भी नहीं है, विश्व सम्राट थे, सारी प्रजा उनको बहुत चाहती थी, ऐसे समृद्धि, ऐसे संपत्ति, ऐसे परिवार, ऐसे पद को त्याग कर सारे दुनिया को त्याग दिया उन्होंने और यहां आए तपस्या करने के लिए, और आसक्त हो गए एक हिरण से, और उसके कारण उनकी सारी तपस्या भंग हो गई, उनकी भक्ति भी खंडित हो गई, भगवान को भूल गए, हाँ, जो भक्त होता है कभी भी पूरी तरह से भगवान को तो भूल नहीं सकता, भगवान तो उसे खींच कर ले ही आते हैं, इसलिए हम लोग शिखा पहनते हैं ना, शिखा रखते हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो तो सर मुंडवा लेते हैं, लेकिन यदि हम भक्ति के पद से हट जाएं तो भगवान को कुछ चाहिए ना खींच के ले आने के लिए। माताओं के लिए समस्या नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए समस्या है, तो शिखा रखते हैं ताकि हम इधर उधर कुछ चले जाएं तो भगवान शिखा पकड़ कर कहे, ए कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे चरण कमलों से दूर जा रहे हो, आओ बैठो इधर, दूर नहीं जाना। लेकिन जब भगवान खींच लेते हैं ना, थोड़ा दर्द होता है। लेकिन हाँ, अब इस मंदिर में जो भी बैठे हैं, अभी हम भगवान को छोड़ के नहीं जा सकते, जाएंगे भी तो जबरदस्ती भगवान ले आएंगे। हमारे एक संस्था के, इस कौन संस्था के भक्त हैं, विदेश में रहते हैं, अमेरिका में, एक बार वो ऊब गए भक्ति करते करते कि बहुत हो गया भक्ति करना, अभी हम थोड़े संसार का भोग करेंगे, ये हम बहुत नियम होते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो बहुत हो गया, अब हम खूब भोग करेंगे। तो गए भोग करने, जैसे ही मंदिर छोड़ के गए, संकल्प लिया था कि मैं तो ऐसे भोग करूंगा कि बस। तो भोग करने बाहर गए, सड़क पे गए, उन्होंने सोचा कि चलो इस शहर से बाहर जाता हूँ, यहाँ शहर में सारे पहचान वाले भक्त हैं तो कहीं मिल जाएंगे तो परेशान करेंगे, तो चलो यहाँ से निकल जाएं। तो हवाई अड्डे पर गए, हवाई अड्डे में जाके फिर हवाई जहाज़ में बैठे, वहाँ कोई सिनेमा दिखा रहे थे हवाई जहाज़ के अंदर, उस सिनेमा में कोई हरे कृष्ण भक्तों की नकल हो रही थी, नकल हो रही थी, लेकिन हरे कृष्ण तो थे ना, वो कोई हरे कृष्ण हरे राम कह के नकल कर रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे सिनेमा के भीतर। तो यहाँ याद दिला दी हरे कृष्ण की, मैं हरे कृष्ण को भूलना चाहता हूँ, ये फिर से यहाँ आ गए। फिर वहां उतरे दूसरे शहर में, हवाई अड्डे पर कोई भक्त आए, सर वुड यू लाइक टू टेक दिस भगवद गीता, आप ये भगवद गीता लेंगे क्या पुस्तक वितरण के लिए? उन्होंने तो कंठी माला निकाल दी थी, तिलक नहीं थे, भक्तों के वस्त्र नहीं थे, एक साधारण कर्मी व्यक्ति की तरह थे, कि नहीं 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 मुझे कोई गीता तो कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहां से। फिर उस शहर में गए कहीं दूसरी जगह, कहां सी बीच था, समुद्र का तट था, वहां भोग करने गए, और क्या देखते हैं कि हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्त वहां से जा रहे हैं। अब विश्वास कीजिए कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी प्रतिदिन प्राय, कि उसने सोचा कि शायद भगवान मुझे छोड़ने वाले नहीं है, फिर वापस मंदिर चले हैं। ये भगवान की कृपा है, एक बार हम भगवान के पास आ जाते हैं तो भगवान छोड़ते नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान को छोड़कर नहीं जा सकता, थोड़े समय के लिए भगवान को भूल सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणां भुजं हरेर् भजन न पक्वोत पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूत मुष्यकिं को वाप्त आर्थम अभजतां स्वधर्मतः। नारद मुनि श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने संसार के निहित कार्यों को त्यागता है, भगवान श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करने हेतु, और भक्ति में कच्चा होने के कारण, अपरिपक्व होने के कारण उसका पतन हो भी यदि जाए, फिर भी उसका क्या नुकसान है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की, जो भक्ति उसने की उसका फल तो शाश्वत है। और दूसरी ओर कोई व्यक्ति संसार के कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है परंतु वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो उसने क्या पाया है? संसार के कर्तव्यों को निभाकर भी क्या पाया उसने, जब उसने भगवान की भक्ति नहीं की? ऐसा नारद जी कहते हैं। खैर, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, चलो पतन हो जाए अपना, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, नारद जी कहते हैं। नहीं, समय का बहुत नुकसान होता है, और कलयुग जैसे बढ़ता जाता है, कौन जाने कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, किस परिस्थिति में होगा, और फिर से जन्म लेना होगा, फिर से भौतिक कष्टों को झेलना पड़ेगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो सोचता है कि बस ये अंतिम जीवन होना चाहिए, इसी जीवन में हमें शुद्ध भक्त बनना है और भगवान के धाम में जाना है, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। तो भरत महाराज के साथ जो बीता प्रभुपाद जी बताते हैं वो हम सबके भलाई के लिए बीता। इस लीला के द्वारा भगवान हम सबको अच्छा उपदेश देना चाहते हैं कि कैसे हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कैसे हमारे भक्ति के नियमों के पालन में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो भरत महाराज ऐसे लाड़ प्यार करते रहे, उस हिरण का खिलाते रहे, कभी कुछ मुलायम घास खिलाते। जब वो ध्यान में बैठते तो भगवान के ऊपर ध्यान करना बंद हो गया। अब ध्यान किसके ऊपर करते थे? हिरण के ऊपर। अब वो हिरण कहाँ गया? अब वो कहाँ है? कहीं किसी शेर ने तो नहीं खा लिया ना? अब उसको घास मिला है ना? तो ऐसे जब ध्यान करने बैठते तो हिरण का जो है वो आसपास में आता, कभी चाटने लगता है उनका शरीर, कभी अपने सिंगों से कभी जानबूझकर टक्कर मार देता, जैसे बच्चे करते हैं। ये बच्चा ही तो था ना आखिर। और स्नेह के कारण भरत महाराज का हृदय भगवान से पूरी तरह से हटकर केवल इस हिरण में लगा रहा। और ऐसे भरत महाराज के दिन बीतते गए। प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि घर में कुत्तों को बिल्लियों को नहीं रखना चाहिए। पालतू जो पशु होते हैं इनको घर में रखने का खतरा ये होता है। हाँ, शास्त्र में आदेश है कि गृहस्थों को चाहिए, बल्कि मनुष्यों को चाहिए कि वो पशुओं की रक्षा करें। जैसे खेत वगैरह में कुत्ते होते हैं, तरह तरह के प्राणी होते हैं, तो उनको खिला देना चाहिए कुछ, परंतु घर में नहीं रखना चाहिए। जब वो बाहर रहते हैं तो आसक्ति नहीं होती, हम पाप भी नहीं करते, उनकी हत्या नहीं करते, उनका भरण पोषण भी हो जाता है, सेवा हो जाती है, पुण्य कार्य है ये। परंतु अपने घर में रखेंगे उनको तो आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति जब हो जाएगी तो खतरा क्या है कि मृत्यु के समय भी उनका ही हम स्मरण करेंगे। जीते जी हमने जिस चीज के ऊपर चेतना को केंद्रित किया है उसी चीज का स्मरण हम मृत्यु के समय करेंगे, स्वाभाविक है। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि जीवन भर हम पाप करते रहें, भोग करते रहें, और केवल मृत्यु के समय बस ऐसे स्विच दबा दें कि भगवान का स्मरण हो जाए। नहीं, ऐसे संभव नहीं है। जिस प्रकार से एक छात्र या विद्यार्थी साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करे, किताब खोले ही नहीं, कौन सी परीक्षा कल है ये भी नहीं जाने, और परीक्षा में जाके बैठे और उसे स्वर्ण पदक मिल जाए, क्या संभव है? नहीं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी उस छात्र को। अच्छी तरह से साल भर पढ़ाई करेगा तब जाकर वो अच्छे नंबर पाएगा परीक्षा में। उसी तरह से जब हम जीवन भर अभ्यास करेंगे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए, तब जाकर हम भगवान का स्मरण अंतकाल में कर पाएंगे, और यही हमारी जीवन की सफलता है, अंतकाल में भगवान का स्मरण करना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। हमारे जीवन की सफलता इसमें है कि हम अंत में भगवान श्री नारायण या भगवान कृष्ण का स्मरण करें। तो जितने भी हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य हैं जो हम निभाते जा रहे हैं, जो भी हम सांख्य योग, अष्टांग योग आदि हम करते हैं, उस सब की परिपूर्णता इसी में है कि हम अंत में भगवान कृष्ण का स्मरण करें। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसी हमारी चेतना होगी मृत्यु के समय, वैसे हमें गति मिलेगी, अगला जन्म में अगला शरीर वैसे ही मिलेगा। और यदि अंतकाल में हमने भगवान कृष्ण का स्मरण किया तो हम कृष्ण के पास चले जाएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रयाण काल में मेरा स्मरण करता है वो निश्चित ही मेरे पास लौट के आएगा, इसमें इस बारे में कोई संशय नहीं करना तुम। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण का अंत काल में स्मरण किया जाए प्रेम पूर्वक, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। तो जीवन भर हमारा हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के लिए जो अनुकूल है हम वही चीज़ें करें, और जो प्रतिकूल हैं चीज़ें उनको त्याग दें। तो भरत महाराज ऐसे सेवा करते गए और उनकी आसक्ति यहाँ तक बढ़ी कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पागल की तरह बात करने लगे। जैसे पागल व्यक्ति बात करता है, अनपशनाप बकता है, वैसे भरत महाराज कहने लगे। देखिए कहाँ भाव भक्ति की अवस्था और कहाँ भरत महाराज और कहाँ अब के भरत महाराज। वो कहने लगे, जब उन्होंने देखा कि वो हिरण अब नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे, हिरण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। अरे ये पृथ्वी माता कितनी भाग्यशाली है, और मैंने क्या तपस्या की, मेरी तपस्या तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पृथ्वी माता ने कितनी बड़ी तपस्या की होगी कि इस हिरण के चरण चिन्ह इसके ऊपर पड़े हैं। ऐसे बात करने लगे भरत महाराज। और ये चांद है, देखो ये चांद ने अवश्य दोस्ती कर ली है इस हिरण से, क्योंकि ये वो हिरण की रक्षा कर रहा है, और अब ये चांद मुझे सांत्वना दे रहा है। आयुर्वेद में ऐसे बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो उसके ऊपर ऐसे जल छिड़कने से उसका ज्वर जो है, बुखार थोड़ा कम होता है। तो अब भरत महाराज सोच रहे थे, इस हिरण के विरह में मुझे बुखार हो गया है, विरह का बुखार हो गया है, ये हिरण कहाँ है दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इधर उधर भटक रहे थे, कहाँ है वो हिरण, कहाँ है। फिर चांद की ओर देख के कहने लगे, ये चांद जो है वो ऐसे वैद्य के समान है जो पानी छिड़क रहा है मेरे ऊपर और मेरे विरह का ज्वर जो है उसे कम कर रहा है। तो ऐसे अनाप शनाप बात कर रहे थे भरत महाराज। और ऐसे बात करते करते वो बिल्कुल भूल गए भगवान को। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तविक परोपकारी कार्य कृष्ण भक्ति है। यदि हम केवल शारीरिक स्तर पर लोगों का कल्याण करने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित ही असफल हो जाएंगे। वास्तविक कल्याण है लोगों को कृष्ण के चरण कमलों तक ले आना और उनको वहां स्थित करना, क्योंकि जब हम कृष्ण के भक्त बन जाते हैं तो फिर निश्चित ही हम संसार के चक्र से छूट जाएंगे। तएव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परम परमं पदाम्बुजम्। कुंती महारानी कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आपके चरण कमलों का दर्शन करना अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना। इसलिए शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः। इसलिए आपके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और आपकी कथाओं में ही आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करेंगे तो आपके चरण कमलों का दर्शन होगा। चरण कमलों का दर्शन होगा तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। तो भरत महाराज ये चीज भूल गए, इस हिरण के आसक्त से इतना आसक्त हो गए, आसक्त होते होते वो भूल गए कि सच्चा कल्याण जो करना है इस हिरण का तो कृष्ण भक्ति में ले आना है, लेकिन पशु को कैसे कृष्ण भक्ति में ले आया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को ही भक्ति में लाया जा सकता है। हाँ, पशुओं का भला किया जा सकता है, लेकिन उनका भला करते करते उनसे हम आसक्त हो जाएं तो ये बहुत धोखे का पथ है। शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद थे, उन्होंने कृपा की एक कुत्ते के ऊपर, जबकि सारे भक्त बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। और क्योंकि शिवानंद सेन ने कृपा की उस कुत्ते के ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कृपा की और उस कुत्ते को उन्होंने वापस वैकुंठ धाम भेज दिया। तो ऐसे भी उदाहरण अनेक हैं, परंतु क्या हम उस पात्र हैं? हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम ऐसे पशुओं का भी उद्धार कर दें? नहीं। इसलिए हमें तो बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि सच्चा कल्याण किसी का वो है कि ये है कि वो हम उसको कृष्ण भक्त बनाए, जिससे कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। जब तक ये भौतिक शरीर होगा हमारे पास, तब तक जीवन का कष्ट बंद नहीं होगा। जैसे कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है, शरीर में कोई फोड़ा आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो केवल फूंकने से ऐसे क्या लाभ होगा? उसको काट के निकालना होगा। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में आना, इसका मतलब है कि ये एक रामबाण उपाय है हमारे जीवन के समस्त समस्याओं के लिए। तो कभी कभी भावुक होकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों के कल्याण के लिए हम शारीरिक स्तर पर काम करें। और कभी कभी ऐसे भी भक्त सोचते हैं कि हम कल्याण कर रहे हैं किसी का और उसमें हमारा ही पतन हो जाए तो क्या लाभ? डूबने वाला व्यक्ति दूसरे डूबने वाले व्यक्ति को कैसे बचाएगा? पहले अपने आप को बचाना चाहिए ना, फिर हम दूसरों को बचा सकते हैं। दूसरों को बचाते बचाते हमारा पतन हो जाए तो फिर क्या फायदा? न उसको हम बचा पाएंगे, न अपने आप को। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो अपने साधना आदि के प्रति बहुत सतर्क रहें, बहुत सख्ती से, अच्छी तरह से वो साधना करते रहें। तो भरत महाराज ऐसे आसक्त हो गए और आसक्ति से वो इतने खो गए कि भगवान को भूल गए। और अंत में जैसे सबके साथ होना है, मृत्यु का समय आ गया। और क्योंकि वो उस हिरण का स्मरण कर रहे थे, तो बस वही हुआ, उनको अगले जन्म में हिरण का शरीर मिल गया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि भक्ति का पथ इतना सुंदर है, इतना लाभदायक है कि किसी व्यक्ति ने थोड़ी भी भगवान की भक्ति कर ली तो वो बड़े से बड़े भय से बच जाता है। त्रायते महतो भयात्। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा भय क्या है जीवन में? वर्ल्ड कप हार जाना? नहीं, सबसे बड़ा भय ये है कि अगले जन्म में हम क्या बन जाएंगे। कोई पशु का शरीर तो नहीं मिले अगले जन्म में। सबसे भयानक अवस्था ये है कि अगले जीवन में हमारी गति क्या हो, दुर्गति ना हो, ये भय है। परंतु कोई भक्ति करता है तो कम से कम उस व्यक्ति को एक मनुष्य जन्म तो मिल जाता है अगले जीवन में। इतनी तो बात निश्चित है जो भगवान यहाँ कहते हैं। और आगे चल के फिर वो अपने भक्ति को जारी रख सकता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। और फिर आगे मनुष्य देह प्राप्त करके वो जहां उसकी चेतना थी पहले, जहां उसने अपनी भक्ति को रोक रखा था पिछले जन्म में, वहां से वो आगे बढ़ सकता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः। फिर उस आने वाले जन्म में विवश होकर भगवान कृष्ण के प्रति, उनके भक्तों के प्रति आकर्षित हो जाएगा और भक्ति प्रारंभ करेगा। तो ये एक साधारण नियम है। परंतु भरत महाराज के साथ हम क्या देखते हैं? मनुष्य शरीर भी उनको नहीं मिला, हिरण का शरीर मिला। परंतु क्योंकि वो इतने आगे बढ़े हुए भक्त थे, भगवान ने उनको वो विशेष स्मरण दिया अपने पूर्व जन्म का। तो हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद भी वो भूले नहीं कि पिछले जन्म में मैं महाराज भरत था और मैंने कितना सब त्याग दिया और फिर एक हिरण से आसक्त हो गया और ऐसे मेरा पतन हो गया और अब मुझे हिरण का शरीर मिल गया है। तो ये सारी बातें महाराज भरत को हिरण के शरीर में भी याद रखी। इसको जाति स्मर कहते हैं। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के जन्म की बातें याद करता है ना, याद रख सकता है, उसे जाति स्मर कहते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि पूर्व जन्म की बातें हमें क्यों याद नहीं है। आप कहते हैं कि पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म है, लेकिन इसका क्या सबूत है? यदि हमें याद रहता तो फिर ये प्रमाण हो जाता हमारे लिए। परंतु उनके लिए प्रश्न ये एक ही है, क्या एक जीवन की समस्या काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए कि आप पुनर्जन्म भी याद करना चाहते हैं? पूर्व जन्मों में भी क्या दुख हुए, क्या कष्ट हुए आपको, उनको भी आप याद करना चाहते हैं? तो खैर, भरत महाराज अब हिरण बन गए, लेकिन एक बहुत विशेष हिरण बन गए। हिरण समाज में साधु बन गए। कालंजर पर्वत में उनका जन्म हुआ, लेकिन जन्म से ही निरासक्त हो गए क्योंकि याद था उनको पूर्व जन्म। उन्होंने सोचा इस जन्म में मैं वो गलती नहीं करूंगा जो कि मैंने पिछले जन्म में किया था, अब मैं किसी से आसक्त नहीं हो जाऊंगा। तो अपने हिरण समाज को छोड़ गए और फिर से कालंजर पर्वत को छोड़ के वो चले आए पुलह आश्रम में, शालिग्राम में, गंडकी नदी के पास, और वहाँ आश्रम में एकांत स्थान में रहने लगे। कभी कभी वहाँ साधु आते थे तो दूर से उनका संग करते थे और ऐसे अपना हिरण का जीवन उन्होंने बिता दिया। कोई इंद्र तृप्ति नहीं की जैसे बाकी हिरण करते थे, बहुत सादा सरल जीवन बिताया और अपने हिरण के शरीर में भी भगवान के ऊपर ध्यान करते रहे और ऐसे अपना हिरण का जीवन बीत गया। और उस जीवन में भी मृत्यु आई और जब मृत्यु आ गई दोबारा जन्म लेना पड़ा और दोबारा किस प्रकार का जन्म उनको मिला और उस जन्म में उन्होंने क्या किया और फिर अंत में क्या हुआ, यदि आप ये सुनना चाहते हैं तो आपको कल सुबह 7:45 आना है। हरे कृष्ण। हाँ, आप सब ये सब चीज़ें तो जानते ही हैं, फिर भी श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं तो इनको बार बार सुनना अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा सैकड़ों बार सुनी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार। और कहो, दोहराओ, और कहो, और कहो, ये है भागवत की कथाएं। कभी कभी भक्तों को लगता है कि अरे ये तो कहानी हमने सुन ली है, ये कथा तो हमने सुन ली है, अब दोबारा क्या सुनना है। लेकिन जितना हम सुनेंगे, क्योंकि ये भागवत की कथा है, इससे हृदय का शुद्धिकरण होगा और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा हमारे हृदय में। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है? हाँ जी, माइक है यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन सबसे बड़ी सुरक्षा, इससे बड़ी कोई सुरक्षा नहीं है। हरि नाम का आश्रय लेंगे और हम नम्र रहेंगे जीवन में तो लापरवाही हमसे होगी नहीं और हम सुरक्षित रहेंगे। जो कभी कभी भीड़ वाले जगह में कुछ जेब कतार आते हैं ना, और इस तरह से जेब काटते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मेरी जेब कटी है, ऐसे होता है ना। तो माया ऐसे है, ऐसे हमारा हमारी चेतना को हर लेती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी चेतना हर गई है। कृष्ण को ऐसे आसानी से भूल जाते हैं, इसलिए भक्त को चाहिए कि वो अपनी साधना बहुत अच्छी रखे, लापरवाही अपने नियमों के प्रति नहीं करे, फिर हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, हाँ, आपका कोई प्रश्न था पीछे?
हरे कृष्ण। भागवतम के सातवें स्कंध में एक श्लोक आया है, उसका अनुवाद यह है कि जब उर्वरा भूमि को, उपजाऊ भूमि को बार बार जोता बोया जाता है तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। जब घी में एक एक बूंद डाली जाती है तो आग भड़कती है, उसके ऊपर तेल ही डाल दिया जाए घी का तो आग बुझ जाती है। इसी प्रकार जैसे कि आदमी विषय भोगों के पीछे लगा रहता है, विषय भोगने से विषय भी शांत होते नहीं है, पर तो अगर विषय को बहुत भोगा जाए तो क्या विषय शांत हो जाते हैं? भागवत में श्लोक है इसके बारे में स्पष्ट।
ये तो एक ऐसे सिद्धांत है जो दक्ष प्रजापति ने भी कहा था। इतिहास में ऐसे कभी नहीं देखा जाता कि किसी ने इंद्र तृप्ति कर करके इंद्र तृप्ति पर विजय प्राप्त कर लिया है, न भूतो न भविष्यति। न इतिहास में कभी ऐसे हुआ है, न भविष्य में कभी ऐसे होगा। इंद्र तृप्ति करते रहने से बल्कि वो आग बुझती रहे और प्रज्वलित रूप से जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। इसलिए उस इंद्र तृप्ति के कार्य से अपने आप को रोकने से ही उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोकना उतना काफी नहीं है, वो त्याग हो जाता है। जैसे हम कह रहे थे भोग और त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, वो द्वंद्व है। केवल त्यागने से काम नहीं चलेगा, हमें श्रेष्ठ कोई आनंद पाना है जीवन में, वो है भक्ति का आनंद। जब हम कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो जो आनंद हमें मिलेगा वो हमें संसार के इंद्र तृप्ति से बचा के रहेगा, परंतु इंद्र तृप्ति करने मात्र से ये संभव नहीं है। उदाहरणार्थ कोई शराबी ये जी सोचे कि मैं बहुत ज्यादा पीऊंगा फिर शराब पीने की इच्छा से मुक्त हो जाऊंगा, कभी संभव है? नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, परम दृष्टवा निवर्तते। तो ऊंचे सुख का अनुभव करने से निम्न श्रेणी के सुख को हम आसानी से त्याग सकते हैं।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए।
आपने बताया कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो ये सोचता है कि इसी जन्म में मुझे भगवत धाम जाना है, ये जन्म मेरा आखिर जन्म होना चाहिए, तो इस पे ज्यादा वेट कैसे रखे, कैसे इस पे स्ट्रॉन्ग फेथ या
श्रवण करके कि कितना आवश्यक है, और ये भी सोच विचार करके पुनर्जन्म लेने से क्या कष्ट होना है। तो जब हम समझ जाएं कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है तो और क्यों यहाँ पे रहें, और दो जन्म चार जन्म क्यों रहे हम। और हो सकता है अगले जन्म में जब हम जन्म लेंगे तो हो सकता है इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो क्या होगा? इसलिए अंतिम जन्म ही ठीक है, यही आखिर जन्म, और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ यार। हरे कृष्ण।
कभी हम प्रचार की सेवा में या जिस तरह से पहले किसी प्रवचन में आप बता रहे थे कि
ऊंचे नियम के लिए छोटे नियम को युक्त वैराग्य में भी हम भौतिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो हम कब समझ सकते हैं कि हमें अभी हम कोई छोटा नियम है इसके लिए भगवान की सेवा के लिए हम
भक्ति के नियमों को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। जब इसकी बात हो रही है तो कर्मकांड के नियमों की बात होती है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो कर्मकांड के नियमों को छोड़ सकता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन है, इस नियम को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसको तो हमेशा करना चाहिए। भक्तों का संग करना, ये भी एक नियम है, हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए, इस नियम को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ऐसे अनेक नियम है भक्ति के जिनको हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन हाँ, जब हम भाव भक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो हो सकता है थोड़े छोटे मोटे नियम जो हैं, ये नियम हमारे लिए बनते ही नहीं है। जैसे आप जब वैदिक भक्ति करते हैं तो चार नियम का पालन बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। कोई चाय नहीं पीता तो बड़ी बात है, अब बाहर जाके किसी से कहिए आप चाय नहीं पीते तो सोचेंगे भाई बहुत विचित्र बात है। लेकिन क्या गोलोक वृंदावन में चार नियम का पालन कोई बात है? कोई तो जब भाव भक्ति के अवस्था में कोई पहुंच जाता है तो ये नियम तो बस स्वाभाविक रूप से इनका पालन हो ही जाता है, व्यक्ति को सोचना भी नहीं पड़ता है ना। लेकिन थोड़े नियम हैं जो कभी भी नहीं त्यागे जा सकते। वो गोलोक वृंदावन में जाके भी तो वही चलेगा, भगवान का गुणगान करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, उनकी सेवा करना, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। थोड़ा जोर से बोलिए। फिर तो प्रकृति के द्वारा ही वो ठीक हो जाएगा। बार बार लापरवाही करते रहें, अपनी ही गलतियों से न सीखें तो क्या उपाय इसके लिए? कोई उपाय नहीं, प्रकृति ही उपाय है। प्रकृति के ठोकर खा खा के फिर व्यक्ति तो कर ही लेगा, है ना। लापरवाही क्यों करनी चाहिए? एक बार कर भी ली गलती से दोबारा नहीं करना चाहिए, दोबारा कर लिया तीसरी बार तो कम से कम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ये हम आएंगे। हरे कृष्ण।
इस प्रकार में कुछ समय हो जाता है भक्ति में, तो हम थोड़ा इस चीज को समझते हैं कि दुख आते हैं तो इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए अच्छे से। और ये स्वाभाविक करते हैं हम लोग, जब दुख आते हैं तो भक्ति करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। परंतु जो सुख है भौतिक जीवन में, इनके प्रभाव से कैसे बदल जाए? क्योंकि ये कई बार महसूस होता है काफी टाइम बाद, जब
नहीं, एक ही उपाय है। जैसे पहले हम कह रहे थे परम दृष्ट्वा निवर्तते, भौतिक सुख से कैसे बचा जाए? भक्ति के सुख का अनुभव करके। भगवान कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है उसका एक बूंद भी यदि हम चख लें तो बस हम सुरक्षित रहेंगे। फिर इस तथाकथित भौतिक सुख में हम रमण करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न किसी ने लिख के दिया है, भरत महाराज भाव भक्त भक्ति के स्तर पर थे तो उनका पतन होना भगवान की कोई व्यवस्था थी हमें सिखलाने के लिए या उनके कर्म का परिणाम था? कृपया समझाइए। अच्छा प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बताते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भक्ति करने से हमारे कर्मों के बीज भी जल जाते हैं। तो भक्तों के जीवन में, विशेष करके जैसे बहुत उन्नत भक्त हैं भरत महाराज की तरह, उनके पूर्व कृत कर्म तो जल चुके हैं। तो जो भी भक्तों के जीवन में होता है वो कर्म सिद्धांत के अनुसार नहीं होता। तो फिर भरत महाराज ने ऐसे क्यों किया, भरत महाराज ऐसे क्यों आसक्त हो गए उस हिरण के ऊपर? और प्रभुपाद जी क्या जवाब देते हैं, जानबूझकर आसक्त हो गए। जानबूझकर मतलब जानते हुए कि ये खतरा नहीं करना चाहिए, फिर भी कर दिया उन्होंने। स्वेच्छा का दुरुपयोग करना तो पुराने कर्मों की वजह से नहीं था। प्रभुपाद जी बताते हैं जानते हुए उन्होंने ऐसे कर दिया। अक्सर भक्तों के साथ ऐसे होता है ना, जानते हुए भी कोई काम हम कर बैठते हैं जो कि नहीं करना चाहिए हमें। तो भरत महाराज के बारे में ऐसे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमारे शिक्षण के लिए ऐसी लीला भी हुई है ताकि हम बहुत सावधान रहें। ठीक है, और कोई प्रश्न था किसी का? हाँ
महाराज, आपने बताया कि जब तक भौतिक शरीर रहेगा तब तक कष्ट रहेगा।
बिल्कुल।
तो जब कष्ट आए तो रहना ही है, तो हमें उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।
तो जब जीवन में कष्ट आते हैं कष्टों का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? जहां तक संभव हो करना चाहिए, सीमा के भीतर। लेकिन सीमा के बाहर जब हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा है और यही सही, इसको हमें भोगना ही होगा। जैसे समझ लीजिए कि हमारी कोई बीमारी है, तो ठीक है बीमारी को ठीक करना चाहिए, चाहे हम वैद्य के पास जाएं, कोई दवाई लें, कुछ कुछ करें, कुछ आसन प्राणायाम करें, कुछ भी करें, अपने आप को ठीक रख सकते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। परंतु जब ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, डॉक्टर भी सब ठीक नहीं कर सकते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है। फिर भगवान के ऊपर निर्भर रहना, अपने साधन भजन में ही विश्वास रखना। तो इसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि की आवश्यकता है कि किस हद तक हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिए और किस सीमा के बाद हमें भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और जब हम प्रयत्न भी करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें कोई बल दिया है कुछ करने के लिए। कुछ तो करना चाहिए हमें। कुछ करने के बाद फिर जब निष्फल रहते हैं, हो जाता है हमारा प्रयास, तो फिर ठीक है भगवान की इच्छा। जैसे अक्सर हम एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक व्यक्ति थे, वृंदावन बरसाना में निवास करते थे, और एक बार एक अफवाह फैल गई कि अब यहाँ एक शेर आया है। तो सारे जो बाबा जी थे वो डर गए वहाँ, अब क्या किया जाए, क्योंकि वो तो केवल पेड़ के नीचे रहते थे, अब शेर आ जाए तो क्या किया जा सकता है। तो ये एक बाबा जी थे जो उनके हाथ में हमेशा छड़ी लेके जाते थे। तो किसी ने पूछा कि आप छड़ी लेकर क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई शेर है ना यहाँ है। तो उन दूसरे आदमी ने कहा कि भाई शेर आए तो ये छड़ी कोई काम की होगी क्या? छड़ी से क्या करोगे, शेर आएगा तो छड़ी किस काम की? तो इस व्यक्ति ने कहा हाँ कर तो नहीं पाएंगे, परंतु तो राधा रानी को दिखाना चाहिए, कुछ तो दिखाना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पर सब कुछ राधा रानी के ऊपर ही छोड़ दें और हम कुछ नहीं करें, हमें कुछ तो करना चाहिए ना, इसलिए हाथ में कुछ छड़ी ले रखी है हमने। ऐसे है, कुछ तो करना चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि व्यक्ति को जीवन में कष्ट आए, भगवान की इच्छा, बस बैठे रहें, है ना। लेकिन एक सीमा होती है। जैसे समझ लीजिए हमारे घर में आग लग जाती है, हमारे दफ्तर में आग लग जाती है, गोदाम में आग लग जाती है, तो अवश्य हमें प्रयास करना चाहिए आग बुझाने के लिए। लेकिन आग एक सीमा के बाहर चली जाती है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा है, तो चुप रहना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। और ऐसे एक सज्जन हैं, हम जानते हैं इनके बारे में, वो रोज जयपुर में राधा गोविंद देव के मंदिर में मंगला के लिए जाते हैं और कभी चुकते नहीं मंगल आरती से। तो एक बार जब वो गए मंगल आरती के लिए, वहां खड़े थे, अचानक उनको खबर मिली कि उनके गोदाम में बहुत बड़ी आग लगी हुई है। तो तुरंत गए वापस, पास में ही था गोदाम, और जाके देखा तो भयंकर आग लगी हुई है। ऐसी आग कि इसको बुझाया नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। हाँ, तो अग्निशमन केंद्र वालों को बुलाया, वो अपने वाहन लेकर आए, वो सब अपना प्रयास कर रहे थे, और इस सज्जन ने क्या किया, आराम से वापस चले गए राधा गोविंद देव मंदिर। किसी ने कहा, भाई तुम्हारा गोदाम जल रहा है तो वापस जा रहे हो? पर देखो, ये ऐसी आग है तो ये लोग भी नहीं बुझा सकते, तो मैं क्या बुझा सकता इसको, तो मेरी मंगल आरती क्यों मिस हो जाए वहां। तो जाके मंगल आरती तो मैं समाप्त कर लूं, मंगल आरती कर लूं, दर्शन कर लूं भगवान का, फिर आ जाऊंगा। वैसे भी मेरे हाथ के बाहर है, छोटी सी आग होती तो मैं कुछ बाल्टी वाल्टी लेके कुछ कर लिया होता मैंने, अब क्या करूं, अब तो प्रयास का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान ने मुझे ये सब दिया, अब भगवान ले जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। तो इसलिए व्यक्ति को इस सीमा जान लेनी चाहिए कि सीमा कहां तक है, और सीमा के बाहर जब बात हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हरि इच्छा, भगवान की इच्छा है। ठीक है,
महाराज ये विश्वास को कैसे बनाए रखें, जब कभी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से भगवान के पास जाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा दिन
होता है। जब करके धीरे 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 वो विश्वास पड़ जाता है, बस हरि नाम का आश्रय हम लेंगे, धीरे धीरे ये हमारे मन में दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ ये शरणागति के रक्षण है, लक्षण है, रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन रक्षा शब्द की परिभाषा क्या है, वो भगवान के शब्दकोश के हिसाब से है, है ना। लेकिन भगवान हमारी चेतना की रक्षा करेंगे अवश्य। ठीक है, और कोई हाँ, यहाँ एक कोई प्रश्न है। जैसा कि आपने बताया कि जब तक हम किसी और व्यक्ति या चीज से आसक्त हैं तो हम भगवान से आसक्त नहीं हो सकते, तो इस जन्म में हम रिश्ते, माँ बाप बच्चे भाई बहन सब हैं तो उनके लिए हम आसक्त होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, पारिवारिक जीवन में तो ये स्वाभाविक है कि हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति हमारे मन में आसक्ति होगी, परंतु इस भावना से होनी चाहिए कि ये भी कृष्ण के हैं, ये मेरे नहीं हैं, कृष्ण के हैं, और मेरे हवाले कृष्ण ने इनको सौंप दिया है, तो इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है कृष्ण भावना में। महाराज भरत की गलती क्या हुई, हिरण की सेवा की लेकिन कृष्ण भावना में नहीं, इसलिए उनका पतन हो गया। यदि हमारे परिवार के सदस्यों की हम सेवा करेंगे कृष्ण भावना में नहीं लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से, तो हमारा पतन होगा, कृष्ण को हम भूल जाएंगे। लेकिन परिवार के सदस्यों की सेवा हमने की कृष्ण भावनामृत में, ये समझ के कि ये भगवान का परिवार है, ये उनकी संपत्ति है, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की सेवा के लिए मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए, ऐसे इनका देखभाल करना चाहिए कि वो अच्छी तरह से भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि हमने परिवार की सेवा की तो फिर इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कृष्ण को हमने परिवार के केंद्र बिंदु न बनाकर केवल हमारी पारिवारिक आसक्ति को हमने केंद्र बिंदु बना दिया, तब फिर हम माया के शिकार हो जाएंगे। ये पारिवारिक आसक्ति बहुत सख्त होती है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। परंतु हमें सावधान रहना चाहिए। भरत महाराज परिवार को छोड़ गए लेकिन हिरण से आसक्त हो गए, क्योंकि कृष्ण भावना में उन्होंने हिरण की सेवा नहीं की। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, माइक है। अच्छा,
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण
जी, जब साधना में हम डाउन हो रहे हैं तो
क्यों?
हाँ, क्योंकि जैसे टेम्पल से दूर रहते हैं, चंडीगढ़ से दूर रहते हैं, तो हमें कब पता पड़ेगा कि हम साधना में डाउन हो रहे हैं? और दूसरा, जब टेम्पल आ रहे हैं तो कैसे हम फोकस रहे कि हम किस काम के लिए आए हैं और वो ही करना है?
पहले ये देखना चाहिए कि साधना कभी डाउन नहीं हो जाए, है ना? ये संकल्प हमें बनाए रखना है। वो दृढ़ विश्वास, दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं, किसी भी अवस्था में हम साधना को बनाए रखेंगे। जो भी हो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी पास में रहेंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ, लेकिन साधन भजन चलते रहना चाहिए हर अवस्था में। इसको कभी नहीं त्याग सकते हम, ये हमारी रक्षा है। इसको छोड़ देंगे तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में नहीं टिक पाएंगे। जब एक सैनिक युद्ध भूमि में चल रहा होता है तो बिना बंदूक के जाएगा कभी? हमेशा साथ में रखेगा ना, और जो भी आवश्यक है उसकी रक्षा के लिए वो करेगा। वो जानता है कि यहाँ खतरा है, किसी भी समय गोली आ सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये युद्ध भूमि है, ये माया के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हमारा कवच है ये हरे कृष्ण महामंत्र। हमारी साधना हमारे लिए कवच है, माया के आक्रमण से हमें बचाती है। इसलिए इस कवच को हमें अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, माइक दे दीजिए। माइक को ऑन कर दीजिए।
हरे
कृष्णा। हरे
कृष्णा। How can this person and how can I get the blessings of all the Vaishnavas?
हाँ, very good question. देखिए, आप सबसे प्रश्न हमसे नहीं है, आप सबको पूछ रहे हैं कि आप सबके आशीर्वाद कैसे वो उनको मिल सकता है। You please ask them. इन सबको पूछिए, यही प्रश्न हम सबको करना चाहिए। वैष्णवों का आशीर्वाद, वैष्णवों की कृपा कब मिलेगी? कबे हवे सही दिन हमार, ऐसे प्रार्थना करते हैं। कल के भजन में हम पढ़ रहे थे ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तब होगा जब हम याद रखेंगे कि हम वैष्णवों के ऊपर निर्भर हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। वैष्णवों के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, वैष्णवों के शुभ इच्छाओं के बिना हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तो भले जो भी कुछ क्यों ना हो भक्तों के समाज में, कभी मतभेद हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। इसके बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। बस यही भावना हमारी रहेगी और वैष्णवों के बीच में हम रह के सबकी सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो अवश्य वैष्णवों की शुभकामनाएं हमारे ऊपर रहेंगी, फिर कृष्ण की कृपा भी आएगी। ठीक है। हरे कृष्णा। अंतिम सवाल किसी का हो तो। हाँ जी, माइक यहाँ दे देंगे। हरे कृष्णा।
नामे रुचि जीवित है वैष्णव से, ये तीन सिद्धांत हमारी भक्ति को पुष्ट करते हैं।
बिल्कुल।
महाराज भरत जी ने जीव पर दया की, क्या उनको नहीं करना चाहिए था या कितनी करनी चाहिए थी? माँ भागवत होते हुए भी
ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। जीवे दया की, लेकिन जिस तरह से जीव के ऊपर दया करनी चाहिए थी वैसे नहीं की। शारीरिक भावना से दया की, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। यही बात है। दया क्या चीज है? जब हम समझते हैं कि ये कृष्ण के दास हैं, परंतु कृष्ण को भूल चुके हैं, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में अटके हैं और इसलिए दुख भुगत रहे हैं, और इनको कृष्ण के चरण कमल पुनः स्थित करना है, कृष्ण से पुनः जोड़ना है उनको, ये दया है। परंतु ये ज्ञान नहीं होगा, ये हमारी दृष्टि नहीं होगी। केवल शारीरिक स्तर पर हम किसी के ऊपर दया करने जाएंगे तो अधिक लाभ नहीं होगा। तो ये भरत महाराज की गलती थी। एक भक्त होते हैं, उनका हृदय कोमल होता है, इसलिए वो करुणा रखते हैं आसानी से अन्यों के ऊपर। परंतु वो करुणा भक्ति के ऊपर आधारित होनी चाहिए। ये सबक हम इस लीला से सीख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौड़ प्रेमानंदे।